നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരൻ ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തഥോ ജയമുദീരയേ. ജന്മേജയ നെ പൂച്ഛാ കി ഹേ വൈശംപായൻ ജീ, പിതാമഹ ഭീഷ്മ കോ പാഞ്ചാൽ രാജകുമാർ ശിഖണ്ഡി കേ ഹാത്ത് സേ മാരാ ഗയാ സുൻകർ രാജാ ധൃതരാഷ്ട്ര തഥാ ഉൻകേ പുത്ര ദുര്യോധന നേ ക്യാ കിയാ ഹോഗാ യേ പ്രസംഗ ഹമേ സുനായി. വൈശംപായൻ ജീ കഹനെ ലഗേ, ഹേ ജന്മേജയ, യേ ജന്മേജയ പരീക്ഷിത് കാ പുത്ര ഹേ. जन्मेजय के कोड हो गई थी तो ऋषि मुनियों ने कहा कि तुम महाभारत सुनोगे तो तुम्हारी कोड दूर हो जाएगी, क्योंकि महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है कि इससे सब प्रकार की मन की इच्छा पूरी होती है. तब जन्मेजय ने अनुष्ठान किया महाभारत को सुनने का. वो जन्मेजय सुन रहे हैं, वैशंपायन जी सुना रहे हैं, वही महाभारत. वैशंपायन जी बोले कि राजन, भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनकर राजा धृतराष्ट्र एकदम चिंता और शोक में डूब गया. सारी शांति नष्ट हो गई. रात दिन उन्हीं उन्हीं के दुख में डूबने लगा उसका विशुद्ध हृदय. इतने में ही उनके पास विशुद्ध हृदय संजय आया और कौरवों की छावनी से रात में ही हस्तिनापुर पहुंचा. भीष्म की मृत्यु का समाचार सुनाया. धृतराष्ट्र को बड़ा खेद हुआ, खूब रोने लगे. पूछा, अरे भीष्म जी चले गए, अब कौरवों में रखा ही क्या है, मेरे पुत्र अब क्या करेंगे, पांडवों ने और कौरवों ने अब आगे क्या किया है वो हमें सुनाओ. संजय ने कहा, हे महाराज, भीष्म जी के मारे जाने पर आपके पुत्रों ने क्या क्या किया वो आप ध्यान पूर्वक सुन लीजिए. उनका निधन होने पर कौरव और पांडव दोनों ही अलग अलग जगह बैठकर अपने अपने विषय में विचार करने लगे. पहले तो वे क्षत्र धर्म की निंदा करते हुए भीष्म के पास आए, फिर उनकी रक्षा का प्रबंध किया. आपस में चर्चा होते रहे, पितामह को परिक्रमा करके फिर वे अपने अपने शिविर में आ गए और दूसरे दिन फिर आपके पुत्र और पांडवों की सेना युद्ध के लिए निकल पड़ी. हे महाराज धृतराष्ट्र, आपकी और आपके पुत्र की नासमझी के कारण तथा भीष्म जी का वध हो जाने के कारण अब कौरव लोग बड़े तेजी से मृत्यु के पास पहुंच रहे हैं. भीष्म जी को खोकर उन सभी को बहुत बड़ा शोक हुआ. उनके न रहने से कौरवों की सेना भी अनाथ हो गई. जिस प्रकार कोई आपत्ति पड़ने पर अपने बंधु की याद आती है, उसी प्रकार अब कौरवों का ध्यान कर्ण की ओर गया, क्योंकि वह भीष्म के समान गुणवान, शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और अग्नि के समान तेजस्वी थे. कर्ण दो रथियों के बराबर का था, किंतु भीष्म जी ने बल और पराक्रमी रथियों की गणना करते समय उसे अर्धरथी ठहराया था. 10 दिन तक, जब तक पितामह भीष्म ने युद्ध किया, महायशस्वी कर्ण ने संग्राम भूमि में पैर नहीं रखा. अब सत्य प्रतीक भीष्म जी की धराशायी होने पर आपके पुत्रों ने कर्ण को याद किया और कहा, कर्ण अब आपके लड़ने का समय आ गया है. सब लोग कर्ण 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 पुकारने लगे. अब महारथी कर्ण समुद्र में डूबती हुई नौका के समान आपके पुत्र की सेना को इस आपत्ति से पार करने के लिए तुरंत कौरवों के पास आया और उन कौरवों को कहने लगा. भीष्म जी में धैर्य, बुद्धि, पराक्रम, ओज, सत्य, स्मृति आदि सभी विरोचित गुण थे. उनके पास अनेकों दिव्य अस्त्र भी थे, साथ ही नम्रता, लज्जा, मधुर भाषण और सरलता भी थी. वे दूसरों के उपकार को याद रखने वाले थे और विप्र विद्वेषियों के विरोधी थे, उनके शांत होने से एक बहुत बड़े वीर का अंत हो गया, बहुत बड़े गुणवान व्यक्ति का अंत हो गया। कर्ण को बड़ा खेद हुआ, उसकी आंखें आंसू में भर गई, लंबे लंबे सांस लेने लगा, क्योंकि भीष्म जी का निधन तो इधर कौरवों का पराजय निश्चित है। कर्ण के ये शब्द सुनकर आपके पुत्र और सैनिक लोग सब आपस में दुख प्रकट करने लगे और ढाड़ मारकर रोने लगे। तब रथियों में श्रेष्ठ कर्ण ने अन्य महारथियों का उत्साह बढ़ाते हुए कहा कि भीष्म जी के गिर जाने से कोई सेनापति न रहने के कारण कौरवों की सेना घबराई हुई है। ऐसे मौके पर धैर्य धारण करो, नहीं तो शत्रु हमें और निरुत्साहित कर देंगे। अब मैं भीष्म की तरह कौरव की सेना की रक्षा करूंगा। मैं अनुभव करता हूं कि अब ये सारा भार मेरे पर है। मैं रणभूमि में घूम घूम कर अपने बाणों से पांडवों को यमराज के घर भेजूंगा। सारे संसार में अपना महान यश प्रकट करूंगा। शत्रुओं के हाथ से मरकर पृथ्वी पर शयन करूंगा। या तो मैं मर जाऊंगा या पांडवों को मारूंगा। सारथी, मेरे घोड़े को तैयार करो, रथ को तैयार करो, मेरे कवच लाओ, शीर शस्त्राण लाओ और सिर और फिर मेरे रथ को 16 तरकस, दिव्य धनुष, तलवार, शक्ति, गदा, शंख आदि सभी सामग्रियों से सजा कर यहाँ उपस्थित करो। तत्काल कर्ण के सामने युद्ध सामग्रियों से भरा हुआ रथ वहां सुशोभित होने लगा। सब लोग आश्चर्य में डूबे कि ये अभी रथ लेकर कहां जाना चाहते हैं। किसी को कुछ बताए बिना कर्ण उस रथ से बड़े तेजी से पितामह भीष्म के पास आए। रथ से उतरा, पितामह भीष्म को प्रणाम किया। हे धृतराष्ट्र, कल जो आए थे वो विरोचित वेश में नहीं आए थे, आज पूर्ण विरोचित वेश में आए हैं। भीष्म को प्रणाम किया, नेत्रों में जल भरकर लड़खड़ाती जबान से कहा, भरत श्रेष्ठ, मैं कर्ण हूं, आपका कल्याण हो, आप अपनी पवित्र दृष्टि से मेरी ओर निहारिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए, मुझे अनुग्रहित कीजिए, मुझे धन संग्रह, मंत्रणा, व्यूह रचना और शस्त्र संचालन में आपके समान कौरवों में कोई दिखाई नहीं देता है। आपके सिवाय ऐसा कौन है जो अर्जुन के साथ लोहा ले सके। बड़े बड़े बुद्धिमानों का यही कथन है कि अर्जुन के पास अनेकों दिव्य अस्त्र हैं और वे निवात कवच आदि अमानवों से भी तथा स्वयं महादेव जी से भी युद्ध कर चुका है। साथ ही उसे भगवान शंकर ने अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए दुर्लभ वर भी दिया है। तो भी आपकी आज्ञा होने पर मैं आज से अपना पराक्रम इस युद्ध भूमि में बताना चाहता हूं। पितामह ने प्रसन्न होकर देश काल के अनुसार कहा, कारण तुम शत्रुओं का मान मर्दन करने वाले और मित्रों का आनंद बढ़ाने वाले हो। भगवान विष्णु जैसे देवताओं को आश्रय दिए हुए हैं, इसी प्रकार तुम कौरवों के अब आधार बनो। दुर्योधन की जय की इच्छा से तुमने अपने बाहुबल से कितने कितने राजाओं को परास्त किया है। देखो, दुर्योधन सब कौरवों का नेता है, उसी प्रकार तुम भी हो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, शत्रुओं के साथ संग्राम करो। देखो, विजयी होने का नहीं दिया, शत्रुओं के समान शत्रुओं के साथ तुम संग्राम करो। युद्ध में कौरवों के पथ प्रदर्शक बनो। दुर्योधन को जय प्राप्त कराओ। दुर्योधन की तरह तुम भी मेरे पौत्र के समान हो, और वैसे भी अंतरंग दृष्टि से देखा जाए तो तुम मेरे ही हो। धर्मतः जैसे मैं उसका हितैषी हूं, तुम्हारा भी हितैषी हूं। कर्ण चरणों में प्रणाम करके वापस सेना में आया। सब पूछने लगे, कर्ण आप कहाँ गए थे? कर्ण ने कहा, पितामह भीष्म से आशीर्वाद लेने गए। दुर्योधन आदि बड़े प्रसन्न हो गए। दुर्योधन ने कहा, कर्ण अब तुम हमारी सेना के रक्षक हो, तुम इसे सनात करो, इस बात का निर्णय करो कि अब क्या करें जिससे हमारा हित हो। कर्ण ने कहा, अब अपना अपना विचार कहिए, आपको क्या चाहिए, आप क्या करना चाहते हो? वो आप भाई। दुर्योधन ने कहा, कर्ण पहले आयु बल और विद्या में बड़े चढ़े पितामह भीष्म हमारे सेनापति थे, खूब अच्छा संग्राम किया, 10 दिन तक हमारी रक्षा की, अब वे तो स्वर्गवास की तैयारी में, अब किसको सेनापति बनाया जाए? क्योंकि कोई नायक नहीं होगा तो फिर नौका कैसे चलेगी? सेनापति होना बहुत जरूरी है, इस पद के लिए तुम उपयुक्त व्यक्ति का नाम दे। कर्ण बोले, हे महाराज दुर्योधन, यह एक बड़ा गहन प्रश्न है। अपनी सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं, कुलीन है, गठिले शरीर वाले हैं, युद्ध कला में प्रवीण हैं, बल और पराक्रम बुद्धि से संपन्न हैं, युद्ध में कोई पीठ दिखाने वाले नहीं है, किंतु एक साथ सभी को तो सेना नायक नहीं बनाया जा सकता ना, इसलिए किसी एक को चुना जाएगा, और यदि एक को चुनना है तो मेरे विचार से समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य द्रोण को सेनापति बनाना चाहिए। सब योद्धाओं के आचार्य हैं, गुरु हैं, वयोवृद्ध हैं, साक्षात शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान हैं, इन्हें कोई परास्त नहीं कर सकता। आपके ये गुरुदेव सभी सेना नायकों में, सभी शस्त्रधारियों में और सभी बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। जिस प्रकार देवताओं ने कार्तिकेय को अपना सेनाध्यक्ष बनाया, उसी प्रकार आप इन्हें सेनापति बनाई। कर्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने सेना के बीच में खड़े हुए आचार्य द्रोण के पास जाकर कहा, गुरुदेव, वर्ण कुल उत्पत्ति विद्या आयु बुद्धि पराक्रम युद्ध कौशल अजेयता अर्थ ज्ञान नीति विजय तपस्या और कृतज्ञता आदि सभी गुणों में आप हम सबसे बड़े चढ़े हैं। आपके समान राजाओं में हमारा कोई रक्षक नहीं है, अतः इंद्र जिस प्रकार देवताओं की रक्षा करते हैं उसी प्रकार आप हमारी रक्षा कीजिए। हम आपके नेतृत्व में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, अतः आप हमारे सेनापति पद को स्वीकार कीजिए। यदि आप हमारे सेनापति हो जाएंगे तो हम अवश्य ही राजा युधिष्ठिर को उनके अनुयायी और भावी बंधुओं से जीत लेंगे। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर उसे हर्षित करते हुए सब राजाओं ने द्रोणाचार्य की जय जयकार की, द्रोणाचार्य का उत्साह बढ़ा। द्रोणाचार्य ने कहा, ध्यान से सुनिए, दुर्योधन, मैं 6 अंगों से युक्त वेद, मनु का कहा हुआ अर्थशास्त्र, भगवान शंकर की दी हुई बाण विद्या और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र को जानता हूं। तुमने विजय की अभिलाषा में मुझे जो जो गुण बताए हैं उन सभी गुणों को निभाऊंगा, पांडवों के साथ संग्राम करूंगा, परंतु आते ही सब क्या हो, परंतु मैं एक के साथ युद्ध नहीं करूंगा। एकदम दुर्योधन आदि सब सकपका गए, कहने लगे, महाराज किसके साथ नहीं युद्ध नहीं करोगे? युद्ध कर सकता हूं, वध नहीं करूंगा। कौन? मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का वध किसी प्रकार नहीं करूंगा, क्योंकि उसकी उत्पत्ति मेरे ही वध के लिए हुई है, मैं उसकी हत्या नहीं कर सकूंगा, उसको नहीं मार सकूंगा। युद्ध कर लूंगा, मारूंगा नहीं। दुर्योधन ने पूछा, ये क्या बात है? कि देखो, आपने पितामह की भी तो एक शर्त सुनी थी ना, कि मैं शिखंडी के साथ युद्ध भी नहीं करूंगा, मैंने युद्ध करने के लिए तो नहीं कहा है, मैंने तो मारने की बात की, मारूंगा नहीं। तो जैसे पितामह शिखंडी के साथ युद्ध भी नहीं कर सकते थे, उस पर बाण नहीं चला सकते थे, बाण चलाना उचित नहीं समझते थे, इसी प्रकार मैं द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को मार नहीं सकूंगा। अब आपको जो उचित लगे वैसा कीजिए। सबने कहा महाराज धृष्टद्युम्न को हम मारेंगे, धृष्टद्युम्न से हम युद्ध करेंगे। बड़ा विजय घोष होने लगा, सब लोग बड़े जय जयकार करने लगे और सब लोगों ने समझ लिया कि अब हमारी विजय निश्चित है। संजय ने कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, सेनापति का अधिकार प्राप्त होने के बाद महारथी द्रोण अपनी सेना की व्यूह रचना करके अपने पुत्रों सहित युद्ध क्षेत्र को चले। उनकी दाहिनी ओर सिंधुराज जयद्रथ, कलिंग नरेश और आपका पुत्र विकर्ण चल रहा था। उनकी रक्षा के लिए गंधार देश की घुड़सवार और उनके सेना शकुनी उनके पीछे चल रहा था। बाई ओर कृपाचार्य, कृतवर्मा, चित्रसेन, विभिन्नशति और दुशासन आदि वीर थे। उनकी रक्षा का भार सुदक्षिण आदि कंबोज वीरों पर था। सब प्रकार के वीर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। कर्ण उनमें सबसे आगे थे। यद्यपि आज पितामह भीष्म कौरवों में नहीं है, लेकिन कर्ण को देखकर किसी को भी भीष्म के अभाव का दुख नहीं हुआ। सबके मुंह पर यही था, कोई बात भीष्म नहीं है तो कर्ण है। बल्कि बहुतों के अंदर तो ये भावना थी कि भीष्म जी अवस्था में वृद्ध थे, कर्ण युवा है और विशेष शक्ति संपन्न है। पांडव लोग हमारे सामने रण क्षेत्र में ठहर ही नहीं सकेंगे। अजी कर्ण तो देवताओं के सहित इंद्र को भी जीत सकता है, पांडवों के जीतने में कौन बड़ी बात है। एक बात और है, भीष्म जी थे तो बहुत पराक्रमी, पर अंदर ही अंदर से वे पांडवों से मिले हुए। कर्ण कम से कम ऐसा तो नहीं है ना, कर्ण उन्हें तीखे बाणों से तहस नहस कर देंगे। इस प्रकार कर्ण की प्रशंसा कर रहे थे। रण क्षेत्र में पहुंचकर आचार्य ने अपनी सेना का शकट व्यूह बनाया। शकट व्यूह, शकट कहते हैं अपने, बोलते हैं बैल चल छकड़ा, छकड़े जैसा उन्होंने सेना का रूप बनाया। इधर पांडवों ने क्रांच व्यू बनाया, क्रॉन्च, क्रॉन्च पक्षी होता है गीत जैसा, वैसा रूप बनाया। कृष्ण और अर्जुन आगे खड़े खड़े, इधर आगे आगे कर्ण और इधर अर्जुन। जब ये सेना यूं चलने लगी, एक दूसरे के निकट आए तो कर्ण अर्जुन को देखता है क्रोध में भर, और अर्जुन कर्ण को देखता है। टकटकी बांधकर एक दूसरे के ऊपर जल्दी से जल्दी प्रहार करके विजय की इच्छा से अपने अपने शस्त्रों को संभालने लगे। यकायक एकदम आगे आकर के और द्रोणाचार्य दुर्योधन के पास आए। बच्चा नीचे उतर जा, पड़ जाएगा। द्रोणाचार्य, अब यहां से ध्यान सुनने की बात। द्रोणाचार्य दुर्योधन के पास आए और दुर्योधन से कहा, दुर्योधन तुमने भीष्म के बाद मुझे सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया है, ये तुम्हारी कितनी उदारता है। तो मैं उसके अनुरूप तुम्हें कुछ न कुछ फल देना चाहता हूं। बताओ तुम्हारा क्या काम करूं, तुम्हारी जो इच्छा हो वो मुझसे वर मांग लो, वो मैं पूरा करूंगा। दुर्योधन ने कहा, वो वर पूरा करेंगे ना महाराज, तुम्हें संदेह है क्या? क्या नहीं, मैं पूछता हूं, वर मांगू तो पूरा करेंगे, जरूर करूंगा। तो दुर्योधन ने कहा कि मैं कुछ सलाह करके आ गया। दुशासन को बुलाया, कर्ण को बुलाया, शकुनी को बुलाया और कहा कि मुझे वरदान मांगने के लिए बोलते हैं। क्या वरदान मांगू? तो उन्होंने बता दिया जो वरदान मांगना था। आया द्रोणाचार्य के पास, आचार्य यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मैं आपसे एक वरदान मांगता हूं, पांडवों के राजा महारथी युधिष्ठिर को आप जीता हुआ पकड़कर मेरे पास ले आए। आचार्य सुनकर आश्चर्य कर गए, तुम कुंती नंदन युधिष्ठिर को कैद करना ही चाहते हो, उनका वध तो तुम नहीं करना चाहते ना? धन्य दुर्योधन, तुम्हारी बुद्धि बड़े पाप से बच गई। यदि तुम उनको कैद करके वध करना चाहते तो तुम्हें ऐसा कोई पाप नहीं होता जो तुम्हारे बाकी रह गया होता। बहुत अच्छा लगे, परंतु मैं पूछता हूं तुम उन्हें मरवा डालने की इच्छा क्यों नहीं करते? तुमने ये क्यों नहीं कहा युधिष्ठिर को मार दो, पांडवों को जीतने के पश्चात फिर युधिष्ठिर को ही राज्य सौंपकर क्या तुम अपना सौहार्द तो नहीं दिखाना, जो प्रेम तो नहीं दिखाना चाहते हो? कैद करके इनको रख दो और फिर पांडवों को जीत लेंगे, जीतने के बाद कहेंगे कि देखो राज्य तो मेरा है और अब तुम अपना राज्य कर जाओ, हम तुमको राज्य देते हैं। ऐसे तुम्हारे अंदर यदि प्रेम की बात आई हो तो पहले ही बता दो ताकि खून खराबा होने से पहले ही प्रेम करा दे। ताकि नहीं, धर्मराज पर यदि तुम्हारा स्नेह है तो ये तुम्हारे लिए बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि धर्मराज तो प्रेम के लायक है, वो अजात शत्रु है। बताओ तुम्हारे मन में क्या बात है? तुम कैद करना क्यों चाहते हो? हे महाराज धृतराष्ट्र, आचार्य के ऐसे कहते ही आपके पुत्र के हृदय में जो भाव बना वो उसके अंदर टिक नहीं सका और तत्काल प्रसन्न होकर कहने लगा, अरे राम आचार्य पाद, युधिष्ठिर के मारे जाने से मेरी विजय नहीं हो पाएगी, क्योंकि यदि युधिष्ठिर को हमने मार भी दिया तो शेष पांडव हमें चुक चुक करके मारेंगे, हमें नष्ट करके छोड़ेंगे। इस बात को मैं खूब गहराई से समझता हूं, इसलिए हम मार नहीं सकते। पांडु हो तो पांडुओं को तो देवता भी नहीं मार सकते, और इस सेना में तो कौन है जो पांडवों से बच जाए? पांडव स्वयं हमारा अंत कर देंगे। बस मैं सांप भी न मरे और लठ्ठी भी न टूटे, ऐसा काम करना चाहता हूं। आचार्य ने पूछा, ऐसा क्या करना चाहते हो? हे गुरुवर, यदि सत्य प्रतिज्ञ युधिष्ठिर मेरे काबू में आ जाएंगे तो उनके सामने फिर मामा शकुनी को खड़ा करके जुए के पास ही खेलूंगा और जुए के पास में फिर पांडवों को वन में भेजूंगा और ये युद्ध यहीं खत्म हो जाएगा और उनका सारा राज्य बिना युद्ध किए, बिना वध किए, बिना किसी के मरे हमको फिर मिल जाएगा। और अब की बार जब हमको राज्य मिलेगा जुए से तो फिर हम धृतराष्ट्र वगैरह किसी की भी बात मानने वाले नहीं है। मैं इसी से ही धर्मराज का वध किसी भी अवस्था में करना नहीं चाहता हूं और सब राजाओं का वध भी रुक जाएगा। द्रोणाचार्य को सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ, वे मनी मन सोचने लगे कि कैसा पापी, कैसा दुष्ट पितामह भीष्म जिस युद्ध के अंदर मर रहे हैं, मैं जहां सेनापति होकर अपने प्राणों की बाजी लगा रहा हूं, इसको अभी भी अपने जीवन की नित्यता दिखती है? वही जुआ खेल करके जीतना चाहता है, हमारे बलिदान का कोई अर्थ ही नहीं है। बड़ा दुख हुआ द्रोणाचार्य। अरे युद्ध में आए हो तो जीवो या मरो, लेकिन यहां भी कुटिलता। पर अभी कहना ठीक नहीं है, बहुत मन को मसोज करके अंत में द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो मैंने तुम्हें वरदान जरूर दिया है, पर वरदान के साथ एक शर्त रहेगी। क्या? यदि वीर अर्जुन ने युधिष्ठिर की रक्षा नहीं की तो युधिष्ठिर को अपने काबू में आया हुआ समझ लो, और यदि अर्जुन रक्षा करता रहेगा तो वो मेरे काबू में नहीं रहेगा। क्यों? अर्जुन तो आपका शिष्य ही तो है ना। अर्जुन के अंदर कितना बल है, उसके पास कितने शस्त्र हैं, मेरी सारी विद्या उसने ली है, इसमें संदेह नहीं है। फिर भी एक तो वो युवा है, दूसरा वो धर्म के पक्ष में है, तीसरा उसके रथ पर कृष्ण विराजमान है, और चौथा उसने कई ऐसे शस्त्र प्राप्त किए हैं जो इंद्र रुद्र आदि के द्वारा ही प्रयुक्त होते हैं। इसलिए अर्जुन के सामने मेरी कुछ नहीं चल पाएगी। जैसे बने वैसे अर्जुन को युद्ध क्षेत्र से दूर दूसरे मोर्चे पर ले जाओ, और फिर युधिष्ठिर को आप काबू में कर लो। फिर मैं युधिष्ठिर को काबू में करने करूंगा। अर्जुन के दूर चले जाने पर यदि धर्मराज एक मुहूर्त भी मेरे सामने डटे रहे तो मैं निस्संदेह उन्हें अपने वश में कर लूंगा। द्रोणाचार्य की इस प्रतिज्ञा पर आपके मूर्ख पुत्रों ने भरोसा नहीं किया। मन में जाना कि द्रोणाचार्य पांडवों पर प्रेम रखते हैं, ये प्रतिज्ञा तो अभी हम दो तीन लोगों के सामने किए, सबके सामने थोड़े ही किए। प्रतिज्ञा तो सबके सामने हो तो सब जने द्रोणाचार्य को उपालम भी दे सकते हैं, और पांडवों के प्रेम के कारण से संभवतः द्रोणाचार्य अपनी प्रतिज्ञा से हट भी सकते हैं कि मैंने ये प्रतिज्ञा नहीं ऐसे की वैसे की। अतः इस प्रतिज्ञा को स्थायी बनाने के लिए सारी सेना के अंदर ये प्रतिज्ञा करवा दी कि देखो ऐसी प्रतिज्ञा हुई है, जैसे ऐसी प्रतिज्ञा हुई है, ताकि द्रोणाचार्य कभी बदल न सके। सैनिकों को बड़ा आश्चर्य हुआ, हमारे सेनापति आचार्य द्रोण युधिष्ठिर को बंदी बनाने की प्रतिज्ञा की है। तब तो हम निहाल हो गए, अब तो युधिष्ठिर कैद खाने में जाएंगे, और जिस राजा का जिस सेना का राजा कैद खाने में चला जाता है उस राजा का तो फिर युद्ध करना कोई अर्थ नहीं रखता है। ताल ठोक करके सब नाचने लगे। एक विश्वास पात्र गुप्तचर कौरवों की सेना में फैले हुए इस द्रोण प्रतिज्ञा के समाचार सुनकर चुपचाप महाराज युधिष्ठिर के पास आया और ये सारे समाचार सुना दिए। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया और फिर युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, आचार्य द्रोण जो करना चाहते हैं तुमने सुन लिया ना। अब ऐसी नीति काम में लो कि आचार्य द्रोण का विचार सफल न हो सके। उन्होंने एक शर्त के साथ प्रतिज्ञा की है, वो शर्त भी यही है कि यदि अर्जुन पास में रहेगा तो मैं कैद नहीं कर सकूंगा, तो तुम आज मेरे पास ही रहना ना, ताकि द्रोण के द्वारा दुर्योधन की इच्छा पूरी ना हो सके। अर्जुन ने कहा, यह ऐसे कैसे हो सकता है, मैं आपको छोड़कर कहां जा सकता हूं, आपको छोड़कर तो मुझे जीने की भी इच्छा नहीं है। युद्ध स्थल में अपने प्राणों को आपके सामने न्योछावर कर सकता हूं, भले ही नक्षत्र सहित आकाश आकर गिर जाए, भले ही पृथ्वी के टुकड़े हो जाए, भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे जीवित रहते हुए स्वयं इंद्र की सहायता पाकर भी गुरुदेव द्रोण आपको कैद नहीं कर सकते। इसलिए जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक आप द्रोण से तनिक भी चिंता न करें। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि मेरी ये प्रतिज्ञा है, जैसे गुरुदेव की प्रतिज्ञा है वैसे मेरी भी ये प्रतिज्ञा है। जहाँ तक मुझे स्मरण है मैंने कभी झूठ नहीं कहा है, मैंने कहीं पराजय प्राप्त नहीं की है और मैंने कभी भी प्रतिज्ञा को तोड़ा भी नहीं। पांडु शिविर में बड़ा उत्साह, मृदंग नगाड़े बजने लगे, पांडव लोग सिंहनाद करने लगे और फिर व्यूह रचना के अनुसार दोनों सेनाएं आपस में लड़ भिड़ी। अब कितना क्या करें, उस समय द्रोणाचार्य भी अपना प्रभाव दिखाए और अर्जुन भी अपना दिखाए, ये युधिष्ठिर भी दिखाए, सब युद्ध। कौरव सेना तो युधिष्ठिर पर टूट पड़ी और पांडव सेना द्रोणाचार्य पर टूट पड़ी, द्रुपद वगैरह सब भिड़ गए आपस में। बीच बीच में अभिमन्यु रथ पर चढ़ करके कौरव पक्ष के राजाओं से, जो राजाओं कौरव पक्ष के सब राजाओं ने मिलकर अभिमन्यु को घेरा और अभिमन्यु ने भी उन सब के छक्के छुड़ा दिए। किसी का साथी मर रहा है, किसी का हाथी मर रहा है, कोई हाथी के नीचे दब रहा है, कहीं छत्र टूट रहे हैं, कहीं धनुष टूट रहे हैं। भीमसेन अपनी गदा से हाथियों को मारकर कभी कभी उठा, हाथियों को उठा उठा के हाथियों ऊपर फेंक रहा है। भीमसेन की गदा से चोट खा करके मद्रराज शल्य वहां उनके वेग को सहन नहीं कर सके। बड़ा दोनों का आपस में मंडलाकार युद्ध भाई घूमते घूमते, अंत में मद्रराज शल्य युद्ध से भाग छूटे। आपकी सेना के चतुरंगिणी सेना कांप उठी। सायंकाल हो गया, सूर्य अस्त हो गया, अंधकार फैल गया, शत्रु मित्र किसी का भी ज्ञान नहीं रहा। तब द्रोणाचार्य ने शंख बजा करके अपना युद्ध बंद किया। सारी सेना अपने अपने शिविर में जा चली गई और अपनी अपनी जगह पर आराम करने लगी। प्रातःकाल हुआ, सब सेना इकट्ठी होने लगी। आचार्य द्रोण ने बड़े खिन्न भाव से संकोच के साथ दुर्योधन की ओर देखते हुए कहा, दुर्योधन मैंने पहले ही कहा था ना कि अर्जुन की उपस्थिति में युधिष्ठिर को देवता लोग भी कैद नहीं कर सकते। आज युद्ध में तुम लोगों ने देखा ना कैसे अर्जुन युधिष्ठिर के पास चिपके रहे। ये युधिष्ठिर को पता कैसे चला? पांडवों को अपनी योजना का पता, ये बात तो मैंने आप दो तीन लोगों से ही कही, तुमको पता कैसे चला? अरे हाँ दुर्योधन, ये जो कृष्ण है ये सबके हृदय में रहने वाले हैं। कृष्ण भूतकाल को और भविष्यत काल को वर्तमान में देखते हैं। तुम हम तो देखते हैं कि युद्ध में क्या होगा। अब जो होगा वो कृष्ण के दिमाग में अभी से ही बना हुआ है, ये होगा, वो हो रहा है उनके सामने, कृष्ण से पता चल गया होगा, नहीं तो इनको इस बात का खबर कैसे पहुंची? अब तुम एक उपाय करो, अर्जुन को बहुत दूर ले जाओ, एक ऐसा और मोर्चा खोलो जहां अर्जुन चला जाए। अर्जुन की एक आदत है वो मैं जानता हूं, उसे कोई युद्ध के लिए ललकारे, कहे अर्जुन यदि तुम्हें बल है, शौर्य है, पराक्रम है, आओ हमसे युद्ध करो, ऐसे कोई ललकार है, वो ललकार को नहीं सुन सकता, चाहे कुछ भी हो जाए, मर मिटेगा, ललकार नहीं सुन पाएगा। और जब अर्जुन ललकार सुन करके दूसरे मोर्चे पर चला जाएगा, तब युधिष्ठिर को कैद करना मेरे लिए आसान हो जाएगा। दृष्टिद्युम्न के सामने सारी सेना को हटाकर युधिष्ठिर को पकड़ लूंगा। अर्जुन के नए रहने पर यदि युधिष्ठिर अपनी ओर से आते देखकर युद्ध का मैदान छोड़कर भाग न जाए तो उन्हें पकड़ो भाई समझा, मैदान छोड़ जाए तो मैं क्या करूं। आचार्य की बात सुनकर के त्रिगर्तराज और उसके भाइयों ने कहा महाराज ये काम तो हम करेंगे, अर्जुन ने हमको बहुत नीचा दिखाया है, रात दिन हमको इसने अपमान के शब्दों से जलाया है, युद्ध में हमको कई बार परास्त किया है, आज हम ही अपना ये मोर्चा खोलेंगे, या तो अब अर्जुन नहीं रहेगा या हम लोग नहीं रहेंगे। दुर्योधन ने कहा शाबाश बहुत अच्छा। इधर सत्यरथ सत्यवर्मा सत्यव्रत सत्येशु सत्यकर्मा ये दस दस हजार रथियों के साथ में आगे बढ़े और फिर मालव तुंडिकेर माविल्लक ललित और मद्रकवीर भी त्रिगर्त देश के साथ में मिल गए और इन सब ने मिलकर के प्रतिज्ञा की कि यदि हम संग्राम भूमि में अर्जुन को न मारकर उसके हाथ से पीड़ित होने पर पीठ दिखाकर लौट आवे तो हमको व्रतहीन ब्रह्मघाती मद्य गुरु पत्नी से संसर्ग करने वाला ब्राह्मण का धन चुराने वाला राजा का अन्न हरने वाला शरणागत की उपेक्षा करने वाला याचक पर प्रहार करने वाला घर में आग लगाने वाला गौ हत्यारा अपकारी ब्राह्मण द्रोही श्राद्ध के दिन में स्त्री संग करने वाला आत्मवंचक धरोहर को हड़पने वाला प्रतिज्ञा भंग करने वाला नपुंसक से युद्ध करने वाला नीच पुरुषों का अनुसरण करने वाला नास्तिक माता पिता और अग्नियों को त्याग देने वाला तथा अनेक प्रकार के पाप करने वाले पुरुषों को जो लोक मिलते हैं वो हमें प्राप्त हो। यदि हम संग्राम भूमि में अर्जुन का वध रूप दुष्कर्म कर लें तो निस्संदेह हमको इष्ट लोक की प्राप्ति होगी। सबने कहा बहुत अच्छा। अब ये सब लोग मिलकर के और युद्ध के अंदर ललकार करने लगे, ए अर्जुन तुम्हें जिस धनुष का बल है लाओ तुम्हारा गांडीव धनुष, करो हमसे युद्ध, हम तुम्हें आज जीवित छोड़ने वाले नहीं हैं। ऐसी प्रतिज्ञा किया कि अर्जुन तैयार होने लगा जाने के लिए। युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन द्रोण ने जो प्रतिज्ञा की है वो तुम सुन ही चुके हो, अब तुम वही उपाय करो जिससे वो पूरी न हो पाए। द्रोणाचार्य बड़े बलवान शूरवीर शस्त्र विद्या में पारंगत युद्ध में बड़े परिश्रम करने वाले वो मुझे प्रतिज्ञा कर चुके हैं पकड़ने की और तुम दूसरी तरफ जाओगे। अर्जुन ने कहा महाराज क्या करो धर्म संकट है, मेरे पास एक सत्यजीत नाम का योद्धा है वो आपकी रक्षा करेगा। पांचाल राजकुमार के रहते आचार्य अपना मनोरथ पूरा नहीं कर सकेंगे, यह पुरुष सिंह युद्ध में काम आ जाए तो सब वीरों के आसपास रहने पर भी आप संग्राम भूमि में किसी प्रकार न टिकेंगे। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा अच्छा ठीक है तुमको शत्रु ललकार रहे जाओ, गले लगाया प्रेम की दृष्टि से देखा छोटे भाई को आशीर्वाद दिया और अर्जुन वहां से विदा होकर त्रिगर्तों के साथ में युद्ध करने लगे। अर्जुन के चले जाने से दुर्योधन को क्या खुशी हुई है, अब सोच रहा है कि बस आज युधिष्ठिर को पकड़ ही लेंगे, आज युधिष्ठिर कैद में चले ही जाएंगे, फिर शकुनी के पासों से जुआ खेल कर हम इस युद्ध को यहीं रुकवा देंगे और ये पांडव फिर दर दर ठोकरें खाते फिरेंगे। आहा कितना अच्छा हमारा समय आ रहा है, ऐसी मन में बड़ी खुशी है और दोनों सेना आपस में लड़ रही है। इधर वो जो अर्जुन के साथ युद्ध करने वाले संसप्तक थे उन्होंने बड़े विचित्र ढंग से मोर्चा बनाया है, और कभी तो अर्जुन को और कभी कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारते हैं। अर्जुन ने मुस्कुराकर कृष्ण से कहा, देवकी नंदन, एक बार कृपा करके इन मरने वाले त्रिगर्त बंधुओं को देख तो लीजिए, रोने के समय खुशी मना रहे हैं, आपकी एक बार कृपा दृष्टि पड़ेगी, मरते मरते बिचारों का कल्याण हो जाएगा, थोड़ा रथ आगे बढ़ाइए ना। भगवान ने रथ आगे बढ़ाया, क्या वहां घमासान युद्ध हुआ है। अर्जुन ने जो ही धनुष टंकार की, घोड़ों की आंखें फटी रह गई, हाथियों ने लीद करनी चालू कर दी, पुरुषों के सब कपड़े खराब हो गए। थोड़ी देर में जब उनको होश आया तो उन्होंने अपने आप को बड़ा शर्म में समझा कि युद्ध से पहले हमारी ये दशा है। फिर अर्जुन ने अपने हजारों बाणों से उन सबको छिन्न भिन्न कर दिया। सुबाहु सुरथ सुधर्मा, बहुत लंबा चौड़ा युद्ध हुआ है, खूब ये सब आपस में ताकत भगा लगा करके युद्ध करने लगे, ऐसे ऐसे शस्त्र छोड़े, नारायणी सेना साथ में ले आए, भगवान की नारायणी सेना। नारायणी सेना के वीरों ने बड़ा क्रुद्ध होकर अर्जुन को चारों ओर से बाण जाल से घेर दिया, और क्षण भर में ही कृष्ण सहित अर्जुन को अदृश्य जान करके और वहां तरह तरह से अपमानित शब्दों से कहने लगे। अर्जुन की क्रोधाग्नि भड़क गई, उन्होंने गांडीव धनुष लेकर विश्वकर्मास्त्र छोड़ा। विश्वकर्मास्त्र छोड़ने पर हजारों कृष्ण हजारों अर्जुन अलग अलग रूप से प्रकट हुए, और बिचारी नारायणी सेना चक्कर में पड़ गई कि इन अर्जुनों में अर्जुन कौन है, इन कृष्ण में कृष्ण कौन है, इन रथों में वास्तविक रथ कौन है, यह अर्जुन है कि ये अर्जुन, यह कृष्ण है कि यह कृष्ण है। फिर एक ऐसा शस्त्र छोड़ा गया कि जिससे वे आपस में ही एक दूसरे को कृष्ण समझ करके और युद्ध करने लगे, और उस दिव्य अस्त्र की माया में फंसकर सब आपस में लड़ भीड़, जैसे राम जी ने 14,000 सैनिकों को मारा था आपस में मोह कर दिया। पर अभी सेना कम नहीं हुई, उस सेना के आ जाने के बाद और सैनिकों के आ जाने के बाद फिर कृष्ण ने पुकार करके कहा, अर्जुन तुम कहाँ हो, मुझे दिखाई नहीं। उन्होंने भी माया फैलाई, अर्जुन ने वायव्यास्त्र छोड़ा, ऐसा अस्त्र छोड़ा, आपको आश्चर्य होगा, वायुवास्त्र के छोड़ने पर वे संसप्तक वीर थे, वो हाथी घोड़े रथ सहित सूखे पत्ते के समान आकाश में उड़ने लगे, वो वायु उनको उड़ाने लगे, वो हाथियों से ही वो चक्कर खाका करके नीचे गिरने लगे, कोई रथों से नीचे गिरने लगे, कोई कैसे मरने लगे। संग्राम भूमि में अर्जुन ने बड़ा ही विलक्षण पराक्रम दिखाया, सारी पृथ्वी पर महारथी मरे 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 दिखाई दिए। फिर संसप्तकों के साथ इधर क्या हुआ, इधर हुआ कि संसप्तकों के साथ अर्जुन तो युद्ध करने के लिए गए, और द्रोणाचार्य की जो सेना थी वो और पांडवों की सेना दोनों आपस के अंदर अलग अलग व्यूह बना करके लड़ने लगी। तो उस व्यूह के अंदर बहुत से राजा लोग भी मर गए। उसमें धृष्टद्युम्न था, उसने आकर के युधिष्ठिर से कहा, महाराज अर्जुन नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूं, द्रोणाचार्य कितना ही प्रयत्न करे आपको काबू में नहीं कर पाएंगे, कैद खाने में नहीं जाने देंगे। खूब बाणों की वर्षा हुई, जो ही धृष्टद्युम्न सामने आया तो द्रोणाचार्य के मन में आया कि अपशकुन हो गया। ये अपशकुन क्या, कि जिसके हाथ से मुझे मरना है वही सबसे पहले दिखाई दिया है, मेरा अपशकुन है। यद्यपि वे उस समय युद्ध करने में कमी तो नहीं रखे, पर मन में अपशकुन हो गया। अब युधिष्ठिर और राजा आचार्य द्रोण आपस में खूब बाण बरसाते हैं। फिर जो सत्यजीत था वो सत्यजीत द्रोणाचार्य के हाथों से मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि सत्यजीत मारा गया तो उसी समय अपने रथ को लेकर के भाग गए, नहीं तो वो कैद कर लेते द्रोणाचार्य जी। वहां से युद्ध में भाग गए और बाकी सेना थी वो लड़ती रही। पांडवों की सेना ने द्रोणाचार्य को फिर घेर लिया और ऐसा लगने लगा कि आचार्य द्रोण अब शायद पांडवों से मारे जाएंगे। दुर्योधन ने आज्ञा दी, अरे पांडवों की सेना को जैसे भी रोको, द्रोणाचार्य को बचाओ और धृष्टद्युम्न से द्रोणाचार्य को एकदम अलग करो। सब प्रकार की बातें होने लगी, सबने अपनी अपनी पूरी शक्ति लगाई। युयुत्सु भी था द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचने के प्रयत्न में था, परंतु उसको रोक दिया गया। नकुल सहदेव सब ये करते रहे। इधर अर्जुन के सामने संसप्त थे, भगवत दत्त था, उन सब का अर्जुन ने उधर विनाश कर दिया, सब मारे गए। भगदत्त ने वैष्णवास्त्र, उस भगदत्त था बड़ा शूरवीर था, उसके पास एक वैष्णवास्त्र था, उसने वैष्णवास्त्र छोड़ा तो वैष्णवास्त्र छोड़ने पर भगवान रथ पर खड़े हो गए और यूं विशाल रूप बनाया और उस शस्त्र को अपने छाती पर ले लिया। अर्जुन को उसके ओट में कर लिया। अर्जुन को बड़ा कष्ट हुआ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आपने तो प्रतिज्ञा की है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल सारथी का काम करूंगा। आप तो अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ रहे हैं। यदि मैं संकट में पड़ जाता तो पड़ जाता, इस अस्त्र का निवारण करने में असमर्थ था तो असमर्थ हो जाता, पर आपको इस प्रकार से ये अस्त्र सहन करने में क्या बालू, क्या क्या आपको सूझी? आपने क्यों अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा? बाण हो तो मैं देवता असुर मनुष्यों सहित संपूर्ण लोगों को जीतने में समर्थ था, फिर क्या बात? और आप मेरे रथ पर बैठे हुए, आप इतने उत्तेजित होकर इस बाण को अपने छाती पर सहन किए, कारण क्या है? कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, अर्जुन तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूं, पूर्व काल की घटना है, हो चुकी है। देखो, मैं चार रूप बनाकर संसार में रहता हूं, किसी को पता नहीं। अपने को अनेक रूपों में विभक्त करके संसार का हित करता हूं। मेरा नाम नारायण है, तो मैं चार जगह नारायण रूप से रहता हूं। मेरी एक मूर्ति तो इस भूमंडल पर नर नारायण के रूप में तपस्या करती, वो नारायण मेरा रूप। दूसरी है, जगत के सारे प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों पर मेरी दृष्टि रहती है, वो मेरी नारायण मूर्ति दूसरी है। तीसरी मूर्ति है कि मनुष्य लोक में जाकर नाना प्रकार की लीला करती है, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी वराह, कभी नरसिंह, ये लीला करती, वो मेरी नारायण मूर्ति। चौथी मेरी मूर्ति है, वो हजारों वर्षों तक जल में शयन करती है। जब मेरा चौथा शिव विग्रह हजारों वर्षों के पश्चात शयन से उठता है, उस समय में मेरे पास भक्त, ऋषि, मुनि सब आकर खड़े होते हैं और मेरी स्तुति करते हैं और मुझसे वरदान मांगते हैं। मैं उनको भक्ति का वरदान देता हूं, या जो ऋषि जो वरदान मांगता है वो देता हूं। एक बार की बात है कि उस वरदान के समय में पृथ्वी देवी मेरे पास आई और कहा कि हे नारायण, ये मेरा नरकासुर नाम का पुत्र है, ये देवताओं से और असुरों से अवध्य हो, माने न देवताओं से मरे न असुरों से मरे, और इसके पास वैष्णवास्त्र हरदम पास में रहे तो कोई उससे युद्ध नहीं करेगा। पृथ्वी की बात सुनकर मैंने वो अपना वैष्णवास्त्र पृथ्वी को दे दिया और मैंने कहा कि देखो पृथ्वी, ये अमोघ वैष्णवास्त्र नरकासुर की सदा रक्षा करेगा। कोई इस पर आक्रमण करेगा, तो वो स्वयं ही मर जाएगा, आक्रमण करने की हिम्मत ही नहीं होगी। बड़ी प्रसन्नता से मैंने वो दे दिया। पृथ्वी बड़ी मनोकामना पूरी हो गई और पृथ्वी उस अस्त्र को लेकर चली गई, अपने पुत्र नरकासुर को दे दी। सुनो अर्जुन, उस नरकासुर ने क्या किया, उसका अधिकार नहीं था। उस नरकासुर ने ये वैष्णवास्त्र भगदत्त को दे दिया। भगदत्त इसी वैष्णवास्त्र के कारण से सदा अजय बना रहा। इसके सामने भी इंद्रादि कोई देवता खड़े नहीं हो सके और आज इसी अस्त्र का प्रयोग तेरे पर कर दिया। इस अस्त्र का तू मुकाबला ही नहीं कर सकता था, इसका सामना करना किसी के ही बस की बात नहीं। तो ये शस्त्र आज अब मेरे में लीन हो गया, अब भगदत्त के पास कुछ नहीं रखा, लगाओ बाण, ये शक्तिहीन हो गया। अब अर्जुन को होश आया। फिर अर्जुन ने अपने बाण मारे, उसके हाथी घोड़े सब नष्ट हो गए और अंत में वो भगदत्त वहां पर मारा गया। भगदत्त के मर जाने के बाद वृषक, अचल, नील आदि कई कई धोए थे, वे सब वहां पर मारे गए। अर्जुन इस प्रकार से कौरवों का वध करते करते अपने हाथ में धनुष लिए हुए मन में विचार करने लगे कि अब अपने को युद्ध बंद करना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अस्ताचल की ओर जा रहा है। बीच बीच में कई योद्धा आए और उन योद्धाओं ने अर्जुन के साथ में युद्ध किया, तो अर्जुन ने उन बहुत से योद्धाओं को मार दिया। शकुनी है, उसका पराजय हो गया, कर्ण का भी पराजय हो गया। ये कर्ण वगैरह सब भीमसेन से लड़ रहे थे और सायंकाल हो गया। सायंकाल हो जाने के बाद ये शंख बजा और सूर्य अस्ताचल की ओर चला गया और सब लहूलुहान थे, अपने अपने शिविर में चले गए। अब कल अभिमन्यु के लिए चक्रव्यूह आदि का निर्माण हुआ। कल अभिमन्यु का वध होगा और जरासंध का, ये इसको जयद्रथ का वध बहुत देरी से होगा, अभी नहीं होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण।